साल समझना है तो जरा बुद्ध साहब से जाके मिल लो, जानकार आदमी, पुराने आदमी। उनका संक्षिप्त परिचय दिया, मुझे उनका फोन नंबर दिया, मैंने फोन लगाया, थोड़ा डरते हुए संकोच से। मुझे ये पता था कि सरकार में एक बड़े पद पर वो रह चुके हैं। बहुत ही सहज में बुद्ध साहब ने मुझसे बात की और कहा हाँ ठीक है आ जाओ मिलो। मैं उनसे मिलने पहुंचा। पहले उन्होंने मेरे सवाल बहुत धीरज से समझे और फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक नक्शा उकेरना शुरू कर दिया। लगभग एक घंटा हम दोनों की बातचीत हुई, कई बातें मेरे सामने साफ हो गई। मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किन किन से मिलना है, किन संस्थानों से क्या जानकारी मिल सकती है, क्या चीज समझना बहुत कठिन है, क्या समझना आसान है। उसके बाद मैं लगभग 3 हफ्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमता रहा, शहरों में घूमता रहा और बुद्ध साहब का बनाया हुआ नक्शा मेरे बहुत काम आया। उसका फायदा ये है कि अब तक जब कोई शोधकर्मी वनोपज पर कुछ जानकारी इकट्ठा करने बैठता है तो कहीं ना कहीं से मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ के उसमें बहुत सी जानकारी थी। जरा उसके स्रोत बता दो, उसमें एक बड़ा श्रेय बुद्ध साहब का था। अपना पर्यावरण, पराया पर्यावरण, हम आगे की बात तभी कर सकते हैं जब हमें ये ठीक से पता हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं। विनोबा ने कहीं लिखा है कि जब कभी अपने से आए लोगों से आगे की बात करनी हो तो ये भूलना नहीं चाहिए हमें जो कुछ आज उनसे आगे दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम उनके कंधों पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण की बातचीत जिन लोगों के कंधे पर खड़ी हुई है उनमें बुद्ध साहब का नाम सहज ही आता है। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनकी स्मृति को पहले प्रणाम करता हूँ। वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जब 1957 में बुद्ध साहब ने प्रशासनिक सेवा में काम शुरू किया तो पर्यावरण नाम का शब्द उस समय इस्तेमाल होता होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उस समय गांधी जी को गए कोई 9 साल हो चुके थे। गांधी जी का लिखा हुआ लगभग 100 अंकों में संकलित हुआ है, 50,000 से ज्यादा पन्ने, उसमें पर्यावरण शब्द नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? क्या गांधी जी में पर्यावरण की चिंता नहीं थी? ऐसा नहीं है। गांधी जी के काम में, उनके विचार में प्रकृति की, परिवेश की चिंता बार बार दिखती है, इतनी दिखती है कि उस समय के किसी और व्यक्ति में शायद ना हो। गहरा अध्ययन भी दिखता है गांधी जी में अपना परिवेश, अपना संसार समझने के लिए। केवल ये शब्द नहीं है पर्यावरण, क्योंकि ये शब्द हमारे शब्दकोश में अंग्रेजी के एनवायरनमेंट के अनुवाद से आया है और मेरा मानना है कि 70 के दशक में आया है। तो इसके पहले क्या हमारे हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में पर्यावरण की समझ नहीं थी? वट सावित्री, आंवला नवमी, नागपंचमी जैसे पर्व मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ, इनमें से घर परिवार में कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है और इनमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं के प्रति एक तरह का भाव स्पष्ट है। वो भाव है कि जो कोई जो कुछ हमारे जीवन का हिस्सा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चलता है। उसे केवल उपयोग की आंख से देखना हमारे यहाँ ठीक नहीं माना जाता। हर तरह के जीव जंतु, हर तरह के प्राणी, कुछ उदाहरण देखें तो दीपावली के एक दिन बाद, यानी इस साल दीपावली 19 अक्टूबर की है, तो 20 अक्टूबर को अन्नकूट का पर्व होगा। अन्नकूट में तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी का विवाह होता है, उसमें गन्नों से लेकर कई और तरह के प्रयोजन आते हैं। इसके 9 दिन बाद आंवला दंपी आती है, जिसमें आंवले के पेड़ की पूजा तो होती ही है, वन भोज भी होता है, यानी जंगल में जाके भोज। हमारे परिवार में ये बहुत हाल तक होता रहा है। उसके बाद, उसके कुछ दिन बाद ही, 5 दिन बाद कार्तिक का महीना लग जाएगा, और कार्तिक का महीना नीम से जुड़ा हुआ है। कार्तिक के स्नान नीम से जुड़े हुए हैं। अगर और पहले आ जाएं, जुलाई के महीने में अगला महीना है, तो इस साल 28 जुलाई को नागपंचमी है, जिसमें कई प्रयोजन होते हैं। कहीं सांप को दूध पिलाने का टोटका है, लेकिन जहाँ तक मेरी मेरा अनुभव रहा है, हमारे बहुत से गांव में ये दिन खेल कूद का रहा है। बहुत से गांव में इस दिन कुश्ती की प्रतियोगिताएं चलती हैं। 40-50 साल पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट भी नागपंचमी पे ही होते हैं। यानी बहुत सी नई चीजें भी पुरानी चीजों में जोड़ी जाती रही हैं, जैसे जैसे परिवेश बदलता रहा है, उन चीजों को पुरानी चीजों के हिसाब से ढाला भी गया है। 13 अगस्त को हल छठ होगी इस साल, जब बैलों की पूजा होती है, उनकी कुछ विशेष तरह की खिलाई पिलाई भी की जाती है। और अभी 10 दिन पहले वट अमावस्या थी, जिसे वट सावित्री के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सावित्री का नाम भी जुड़ा हुआ है। एक राजकुमारी जिसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध तपोवन में रहने वाले एक सत्यवान नाम के आदमी से शादी की। वट अमावस्या से नौतपा शुरू होता है। 9 दिन जो साल के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं। नौतपा आज से 3 दिन पहले समाप्त हुआ है, 3 जून को। और एक कहावत ये चलती है कि अगर नौतपा तपे नहीं तो चौमासा बरसता नहीं है। ये कहावत मैंने कई लोगों से सुनी है। कुछ दूसरे प्रयोजनों में मुझे चौमासा समझने की जरूरत पड़ी, यानी मॉनसून। और मॉनसून से ज्यादा शायद ही कोई मौसमी धर्रा है जिसका अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया हो। कोई 150 साल से मॉनसून को आधुनिक विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। आज भी इसको लेकर अनुमान ही है कि मॉनसून जैसा है वैसा क्यों है। ऐसा कैसे होता है कि हर साल इस मौसम में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से ढेर सारा पानी भाप बनकर इतनी लंबी दूरी तय करता है और हमारे यहाँ आके बरसता है। एक वैज्ञानिक का अनुमान है कि चौमासे के एक दिन में औसतन 75,000 टन पानी भाप के रूप में पश्चिमी तट से हमारे देश की ओर लांघ कर आता है। कैसे आता है ये विज्ञान को ठीक से नहीं पता।
कुछ लोग कहते हैं इसमें हिमालय का हाथ है, कुछ तिब्बत के पठार का हाथ बताते हैं, उसमें लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हर तरह का प्रेशर आ जाता है। लेकिन ईमानदारी से बात करने वाला कोई भी वैज्ञानिक आपको सहज ही बता देगा कि विज्ञान इसको बहुत ठीक से समझा नहीं सकता। तो नौतपा तपने और चौमासे के बरसने का संबंध जब हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से लगाया होगा तो उसको इतना जल्दी किनारे नहीं करना चाहिए। जब तक नई चीजें, नई व्यवस्था, नया विज्ञान हमें बहुत सफाई से ये समझा न सके, उसके पहले जो हम मानते आए हैं उसे किनारे करना शायद बहुत ठीक ना हो। क्योंकि ऐसी कहावतें कुछ पीढ़ियों के अनुभव से बनती हैं धीरे धीरे। आज इस भाषण के लिए मैं इन तारीखों को एक बार कैलेंडर में देख रहा था। हमारे यहाँ लाला राम स्वरूप राम नारायण की पंचांग इस्तेमाल होती है और तारीखें देखने के साथ साथ मैं हमारी नंदी बुआ है नंदिता मिश्र उनसे बात करे जा रहा था कि उन्हें कितना याद है इन पर्वों को मनाने के तरीकों को लेकर। और फिर उस पंचांग में मुझे कुछ नई तरह के पर्व दिखने शुरू हुए। 5 जून पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व सागर दिवस है, 15 जून को विश्व वायु दिवस है। ये सारे दिवस उस पंचांग में नहीं है। उस पंचांग में देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र की एक फहरिस्त जारी होती है जिसमें नए पर्व लिखे होते हैं, तो वो देखना शुरू किया। तो कल पर्यावरण दिवस था 5 जून, 8 जून को विश्व सागर दिवस है, 15 जून को विश्व वायु दिवस है, 17 जून को कूड़ा इकट्ठा करने वालों का विशेष दिवस है और 17 जून ही रेगिस्तानों को बढ़ने से रोकने का दिवस भी है। शायद कूड़ा इकट्ठा करना और रेगिस्तान रोकना एक ही दिन में फिट हो पाए। एक महीने पहले आ जाते हैं मई के महीने में, 3 मई प्रवासी पक्षी दिवस है, 22 मई जैव विविधता दिवस है, इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं मई के महीने में साइकिल दिवस आता है और मानसिक संतुलन दिवस भी इसी महीने में है। अगर आपको लगता हो कि वो जा रहा है तो पकड़ के रखें, उसके लिए भी एक महीना है पूरा, क्योंकि मई का महीना पूरा मानसिक संतुलन महीने के रूप में मनाया जाता है। ये सोचते हुए लगता है कि ये क्या मानसिक असंतुलन की अवस्था होगी जिसे एक पूरा महीना चाहिए मानसिक संतुलन को पकड़ने के लिए। इसके थोड़ा आसपास और झांक लेते हैं। एक हफ्ता पहले 31 मई को तंबाकू बंदी दिवस था और इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं और उनका शोर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि 31 मई श्रुति बचाओ दिवस भी है, हियरिंग प्रिवेंशन डे। अब ये इतने सारे दिवस, ये पर्यावरण की एक एकदम नई वर्तनी है जो हमें संयुक्त राष्ट्र से भेंट में मिली है। मैंने आपको केवल 2 महीने बताए हैं, अगर मैं पूरा 10 महीना पकड़ लूं तो शायद हम लोग बुद्ध साहब के जन्मदिन तक अक्टूबर तक बात करते रह जाएं। तो 2 महीने पर ही इसे रोकूंगा। और इसमें ये भी एक बात ध्यान आती है कि ये जो सब नए पर्व हैं, फला दिवस, डिका दिवस, इनमें कोई उत्साह नहीं होता। कोई ऋतु फल, कोई नई फसलों के आधार पर चौका रसोई बनाना, कुछ नए पकवान बनाना, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण दिवस पर पूरन पूरी खाई जाएगी या तिल के लड्डू खाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई आस पड़ोस के साथ मिलकर झांकी नहीं बनाता, कोई प्रभात फेरी नहीं निकलती, साथ मिलकर कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा उपवास नहीं होता, कोई गले नहीं मिलता, कोई सरदर्द प्रार्थना भी नहीं होती, तो फिर होता क्या है? अखबारों में चिंता जताई जाती है। आजकल सोशल नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें लोग कुछ हैप्पी एनवायरनमेंट डे वगैरह भी कर देते हैं, उसमें हैप्पी वाटर डे हो जाता है। ये एकदम नई भाषा में इसकी बात होती है। कोई घर में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए, स्टेटस अपडेट के नाते एनवायरनमेंट डे बहुत काम आता है। एक अटपटी भाषा, ऐसी भाषा जो पहले सुनने में नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे नई भाषा से ही आपत्ति है, नई चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, जैसे पुरानी चीजें खराब भी मिलती हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा अटपटा लगता है कि ये सब बातचीत ग्लानी में और एक तरह के बोझ में होती है, और उसमें साफ सच्ची बात करने की जगह नहीं रहती। हमारे मन्ना जी यानी भवानी बाबू की एक छोटी सी कविता है, मेरा और तुम्हारा सारा फर्क इतने में है, तुम लिखते हो मैं बोलता हूं, और कितना फर्क हो जाता है इसमें, तुम ढांकते हो मैं खोलता हूं। आप में से कुछ लोग जरूर मन्ना जी से मिले होंगे। मन्ना जी का हमेशा यह आग्रह रहता था कि अपनी भाषा बोलने चालने की भाषा होनी चाहिए, व्यवहार की भाषा होनी चाहिए, उसमें लिखी पढ़ी चीजें भी आए लेकिन उसका स्वभाव लिखत पढ़त का नहीं होना चाहिए। तो ये जो नई पर्यावरण की बात है, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मन्ना जी की पंक्तियां हैं, तुम ढकते हो मैं खोलता हूं, मैं उघाड़ता नहीं हूं। उघाड़ना बहुत अलग चीज है। आजकल पत्रकारिता में उघाड़ना लगभग किसी सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि देखा मैंने क्या उघाड़ कर रख दिया। खोलना बहुत अलग चीज है। खोलना लगभग काचनी की फली को धूप में सुखाने जैसा है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो खोलने में वही भाव है कि किसी चीज को साफ सुथरे रंग से सामने रख दिया जाए। मुझे लगता है कि अपने पर्यावरण की बात, हमारे विचार की बात और विचार की बात भाषा की बात होती है। अगर आप किसी विचार को परखना चाहें तो भाषा एक बहुत अच्छी कसौटी है, एकमात्र कसौटी है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन एक बढ़िया कसौटी है भाषा। भाषा चाहे नई हो चाहे पुरानी, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, और वो अपनी भी हो सकती है और पराई भी। इसमें अटपटा, मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं कि इसमें दिक्कत ये नए होने की नहीं है। पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को हमारे देश ने अपने राजदूत को संयुक्त राष्ट्र भेजा और गांधी जी की प्रतिमा के सामने जलवायु परिवर्तन को हुई पेरिस संधि के कागज संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को सौंपे। इसकी खबर बनी, कई जगह ये खबर आई कि भारत ने गांधी जयंती के दिन जलवायु परिवर्तन को रोकने के अपने अपने कार्यक्रम पर सरकार का ठप्पा लगाकर संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया है। उस समय सरकार से जो वक्तव्य आए उसमें यह भी था कि गांधी जी ये देखकर कितना खुश होते कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग कितने प्रतिबद्ध हैं। मुझे बहुत अटपटा लगा ये, इसलिए क्योंकि उसके तीन दिन पहले एक बहुत गंभीर खबर आई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गांधी जी जीवित होते तो गांधी जी का ध्यान उस दूसरी खबर पे जाता। ये खबर सितंबर के आखिर में आई थी और सितंबर के आखिर में ही ये खबर आ सकती थी। उसमें कहा गया था कि हवाई पर, हवाई नाम का एक द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और वो प्रशांत महासागर के एकदम बीच में है। वहां पर एक ऊंची पहाड़ी पर जलवायु नापने के कई यंत्र बहुत पहले से लगे हुए हैं क्योंकि उस प्रयोगशाला को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रयोगशाला प्रशांत महासागर के एकदम बीच में हो वो पृथ्वी की एकदम ठीक जानकारी देती है और सितंबर के महीने में पहली बार हवाई की प्रयोगशाला ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 400 अंश के ऊपर नापी। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि ये हवाई में हुआ जहां पर कोई बहुत ज्यादा उद्योग नहीं है, धुआं उगलते विशाल शहर नहीं है और हजारों किलोमीटर तक चारों तरफ फैला प्रशांत महासागर है जो सही में प्रशांत है। दूसरी बात कि ये सितंबर में हुआ। कार्बन की मात्रा हमारे वातावरण में सितंबर के महीने में सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है मार्च के अंत में। इसका कारण समझना इतना कठिन नहीं है। ज्यादातर भूखंड उत्तरी गोलार्ध में है पृथ्वी के और उन्हीं के ऊपर ज्यादातर पेड़ हैं। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तब प्रकाश ज्यादा आता है तो पेड़ हवा से कार्बन निकाल लेते हैं और इतनी कार्बन निकाल लेते हैं कि कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे नीचे आ जाती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा आता है और बहुत से इलाकों में पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, कार्बन निकालना बंद कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मार्च तक आते आते एकदम बढ़ जाती है जब प्रकाश फिर बढ़ता है और पेड़ों की पत्तियां फिर वसंत के साथ निकल आती हैं। जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए उस समय वो 400 के अंश के पार थी, ऐसी जगह जहां उसे सबसे कम होना चाहिए। इस घटना के तीन महीने पहले दक्षिणी ध्रुव पर एक प्रयोगशाला ने पहली बार 400 अंश के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नापी। ये दोनों अगर हम पर्यावरण की चिंता के समय में सही में रहते तो ये बहुत बड़ी खबर बनती, लेकिन मैंने पाया कि ये मुझे केवल इसलिए पता थी क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी बहुत ध्यान से खोजता रहता हूँ अखबारों में, टीवी में, ऐसी जगहों पे भी जो पत्रकारिता से बहुत बचते हैं इसलिए बहुत तैयार माल ढूंढते रहते हैं जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खोजी पत्रकारिता ना करनी पड़े, ऐसी जगहों ने भी इसको खबर नहीं बनाया। लेकिन ये खबर बनाया कि भारत ने कुछ कागज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। 400 अंश के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड आखिरी बार हमारे वायुमंडल में थी तब मनुष्य का नामो निशान हमारे ग्रह पर नहीं था। हमारा बनना हमारे आज के आकार में पहुंचना 350 अंश के नीचे हुआ है, यानी जिसे हम अपनी दुनिया मानते हैं वो दुनिया कार्बन के 350 अंश के नीचे की दुनिया है। पिछले सितंबर के आखिरी हफ्ते में वो दुनिया सदा के लिए विदा हो गई। अब चाहे हम 2 पीढ़ी तक सारा कार्बन उत्सर्जन रोक दें, कोयला जलाना बंद कर दें, अपनी मोटर गाड़ियां दौड़ाना एकदम बंद कर दें, तो 2 पीढ़ी तक वो 350 अंश तक में आने वाला नहीं है। और इनमें से कोई भी चीज करना कितना कठिन है ये हम सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि 399 अंश सुरक्षित है और 400 में एक कोई गजब की असुरक्षा आ जाती है। ये एक लक्ष्मण रेखा भर थी। इस लक्ष्मण रेखा के उस पार कुछ मारीचिका है जिसके पीछे हम ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं वो आपको समझना हो तो फिर एक बार पर्यावरण की भाषा से समझ सकते हैं। हर साल दिसंबर के महीने में जलवायु परिवर्तन को रोकने की संयुक्त राष्ट्र की संधि का सालाना जलसा होता है। जलसा इसे नहीं कहना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की बैठकें आप में से, यहाँ पर कई सरकारी अफसर भी हैं, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखी हो, वो एकदम मनहूस बैठकें होती हैं। ये पर्व एकदम मनहूसियत के पर्व होते हैं और यहाँ पर सभी देश अपने सबसे प्रखर कूटनीतिज्ञ भेजते हैं, ऐसे लोग जो बिना आंख झपकाए एकदम आदर्शवाद की बात कर सकें और जहां मौका मिले तो दूसरे लोगों पर जो भी ठीक ठाक करना है उसकी जिम्मेदारी एकदम से थोप सकें। इन सब लोगों को वहां पर सभी राष्ट्रीय सरकारें ये कहकर भेजती हैं कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए, रोकने की जो कीमत है वो हमारी सरकार किसी तरह ना चुकाए, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम ये सुनिश्चित करना है कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी दूसरों पर रहे। मुझे 2 बार ये मौका मिला है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने की संधि पर होने वाली सालाना बैठक एक पत्रकार के नाते कवर करूं। 2 हफ्ते ये कार्यक्रम हर साल चलता है और मुझे सही में विश्वास नहीं हुआ कि इतने हजारों लोग इस कार्यक्रम के लिए हर साल कैसे आ जाते हैं। हर जगह कहा जाता है कि ये पृथ्वी को बचाने का आखिरी मौका है और ऐसे 25 मौके तो जा चुके हैं। 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने की संधि रियो शहर में हुई थी, उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन आज तक उसको लेकर, उसके बाद जो भी संधियां हुई हैं उनको लेकर झगड़े ज्यादा हुए हैं और कार्बन को वातावरण में कम करने के लिए काम कम हुए हैं। इसके थोड़ा आगे जाने के पहले हम एक बार कार्बन का हवा में क्या महत्व है ये समझ लें। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम खराब चीज नहीं है। अगर हमारे वातावरण, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारे ग्रह का तापमान आज से 33 डिग्री नीचे चला जाएगा, यानी सब कुछ जम जाएगा और हमारा जीना एकदम मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 2 मुख्य गैसें हमारे वायुमंडल में व्याप्त हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों उस विकिरण को रोकती नहीं है जो सूरज की गर्मी को हमारे ग्रह से बाहर फेंक देती है। हर रोज पृथ्वी का, मान लीजिए हम पृथ्वी का वो हिस्सा चुने जहां पे हम मौजूद हैं, तो दिन में यहाँ पर सूरज की किरणें गर्मी लाती हैं जब रात होती है तो वो गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इस गर्मी को रोकते नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी अलग गैस है, उसके कण इस विकिरण के आते ही कांपने लगते हैं और उनके कांपने का नतीजा ये होता है कि उस विकिरण के अंश टकराकर इधर उधर फैल जाते हैं सीधे बाहर जाने की वजह, और उसका कुछ हिस्सा वापस लौटकर हमारे ग्रह पर आ जाता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो जीवन की ऐसी की तैसी हो जाए, फिर पौधे हवा से खींचेंगे क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है हमारे वायुमंडल में जीवन के लिए, लेकिन अगर वो एक हद से आगे चली जाए तो फिर सूरज का प्रसाद जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमारे पास रहने लगता है, और ये हमारे ग्रह के इतिहास में कई बार हो चुका है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि कहीं कोई बर्फ नहीं बचती और एकदम गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं। मैंने सुना नौतपा जाने के बाद भी इस बार भोपाल में गर्मी ने कुछ अलग जौहर दिखाया। मैंने बहुत शिकायतें सुनी लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन बारिश हो गई थी, तो मैं मान के चलता हूँ कि जलवायु परिवर्तन सब झूठ, क्योंकि मैं यहाँ आया और यहाँ बारिश हो गई, यहाँ ठंडक थी। हम सभी की सीमाएं कुछ ऐसी हैं, हम सबको जो समझ में आता है, हम सब कहीं ना कहीं सावन के अंधे हैं जिन्हें अपनी अपनी वही कहानी दिखती है जो हमें समझ में आती है, और कार्बन का चक्र हमें यही बताता है कि उसका जो बारीक संतुलन जीवन को पोसता है वो संतुलन हमने बनाया नहीं है, लेकिन वो संतुलन चला गया तो हम नहीं रह सकते, उस संतुलन को बिगाड़ने में हमारा योगदान जरूर है लेकिन उसको ठीक करने में हम एकदम असहाय हैं। सरकारें 1992 से लेकर आज तक एक दूसरे से इतनी झगड़ रही हैं कि हाँ हाँ ये एक पाकिस्तान के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, शायर थे इब्ने इंशा, उनकी कहीं दो पंक्तियां आती हैं कि हक अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। जलवायु परिवर्तन की संधि में होने वाली सारी बातें ऐसा लगता है इब्ने इंशा जी से सीख कर कही गई हैं, क्योंकि हर कोई, मैंने वहां भाषण सुने और बहुत लंबे लंबे भाषण होते हैं, इतने लंबे भाषण की आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते, उनमें ये वचन उठाया जाता है कि हम धरती को बचा के ही रहेंगे, और फिर जैसे ही उस पे कुछ करने की बात आती है तो कहा ये आप करिए। हर देश दूसरे के कुछ करने के लिए कारण निकालता है, नित नए कारण, उसकी बहुत गहरी राजनीति है जिस पर अगर बात करेंगे तो फिर बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि ये बातचीत कहीं से भी सामाजिक नहीं होती और इस बातचीत में सच्चाई की जगह नहीं होती, ये बातचीत एकदम पराई भाषा में की जाती है, ऐसी भाषा में जिसमें मुंह में राम और बगल में छुरी, और बातचीत आप केवल जलवायु परिवर्तन की ही सुनेंगे, जबकि रियो में 1992 में तीन बड़े समझौते हुए थे, एक जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए था, दूसरा जैव विविधता को मिटने से बचाने के लिए था, और तीसरा रेगिस्तानों के विस्तार को रोकने के लिए था। रेगिस्तान का विस्तार और जैव विविधता बचाने की जरूरत दोनों ही गरीब देशों में है, क्योंकि ये कुछ अटपटी बात है कि गरीब देश गर्म इलाकों में ही है और ज्यादातर अमीर देश शीतोष्ण इलाके में है, वहां वैसे ही कोई जीवन की विविधता पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं थी, और जो थी उसे
उसका मुलम्मा बना के औद्योगिक क्रांति ये देश बहुत पहले कर चुके हैं। ना वहां कोई वन्य प्राणी बचे हैं, ना प्राकृतिक जंगल बचे हैं। तो वहां से बहुत सारा पैसा गरीब देशों में डाला जाता है ये कहने के लिए कि हम तुम्हारे यहाँ बचाएंगे। भोपाल के ही एक अधिकारी थे जो मुझे देहरादून के एक संस्थान में मिले और उन्होंने बताया कि वो एक बार किसी काम से जर्मनी गए हुए थे और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट इलाके में एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के एनजीओ में उनका जाना हुआ। तो उन्होंने कहा मैं घुसते ही मैंने देखा दरवाजे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था जिस पर बाघ बना था और उसके नीचे जर्मन में लिखा था कि अगर आपको भारत में बाघ को बचाना है तो यहाँ पर दान दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने भीतर जाके उनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे यहाँ बाघ के संरक्षण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके जंगलों में सबसे बड़ा शिकारी तो भेड़िया था और आपने यहाँ पे उसको खत्म कर दिया है, लेकिन यूरोप का भेड़िया अभी भी स्पेन के कुछ जंगलों में बचा हुआ है, आप उसे यहाँ पर क्यों नहीं ले आते, यहाँ उसका संरक्षण कीजिए, वो इस जंगल का शेर रहा है। तो जिस व्यक्ति से उन्होंने ये कहा वो बिल्कुल तमतमा उठा, उसने कहा क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ गडरिए, यहाँ के गडरिए हमें खा जाएंगे, हमारा दफ्तर भी यहाँ नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा सारे गडरियों की बात सारे राजनेता सुनेंगे, अगर भेड़िए आ गए तो वो भेड़ों को कुछ भेड़ों को तो खाएंगे, तो जो लोग भेड़ चराते हैं वो जाके अपने राजनेताओं से कहेंगे, राजनेता हमारा बिस्तर गोल कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे इतना अटपटा लगा ये देखकर कि हमारे देश में बाघों के वन के संरक्षण के लिए अगर लोगों को लात मार के निकाला जाना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी कीमत धनी लोग यूरोप में नहीं चुकाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की भाषा में आपको हमेशा इस तरह की बातें खूब दिखेंगी। आपको गंगा बचाने में भी ये दिखेगा, बहुत से लोग दिखेंगे जो कहेंगे कि बस गंगा तो अब हम बचा के ही रहेंगे। उनसे आप पूछिए कि आपने बहुत अच्छी बात है आपने अभी पानी पिलाया ये कहाँ से आया, तो कहेंगे नहीं घर में आरो है उसमें साफ करके आया। हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये जोड़ना बंद कर दिया है कि जैसे जैसे हमारे घर में पानी साफ करने के यंत्र लगते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जल स्रोतों की खाट खड़ी हो रही है। बहुत सीधा संबंध है ये, घर में पानी साफ करने के यंत्र, जल स्रोत प्रदूषित, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा। हर कोई ये कहेगा कि नहीं गंगा तो बस परसों 12 बजे तक बचा लेंगे हम, उनको आप कहीं रोक नहीं सकते। उनके साथ बैठक में हो तो उनसे कहीं शांति से कहें कि भैया कैसे करोगे, ये कोई 30 साल से तो कार्यक्रम चल ही रहे हैं सरकार के गंगा को साफ करने के, आप ऐसा क्या कर लोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस परसों तक बच जाए, परसों अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे नहीं आगे, आखिर उम्मीद रखनी चाहिए, सकारात्मक रवैया होना चाहिए। तो वहां आप साफ सुथरी बात कर नहीं सकते, पर मैं ये मानता हूं कि जहां कहीं इस तरह की बात हो तो आजकल लोगों में एक नई तरह की उदारता है जो टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बहुत अच्छी दिखती है। बिल्कुल मुट्ठी बांध के लोग मेज पे बिल्कुल धक्का मार के कहते हैं नहीं बट टेल अस व्हाट इज द सॉल्यूशन। इसे में ये कहने का मन होता है कि सॉल्यूशन आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, 2.5 किलो ले आइए, क्योंकि उसमें इतनी उदाबली है और ये इतना लगभग ऐसा मान लिया गया है कि उम्मीद रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी भी तरह से कोई नाउम्मीदी की बात कर दी तो वो सहन नहीं की जाएगी। कहीं आपने बताया कि कोई चीज़ खराब है तो आपको हाथ की हाथ बताना पड़ेगा कि ये ठीक कैसे होगी। वो ठीक हो नहीं हो इसकी चिंता नहीं है, बताना पड़ेगा कि ठीक कैसे होगी, ताकि हम जाके दूसरे लोगों से कह सकें कि ये ठीक कर सकता है। और ये एक अजीब सी भाषा हमारे चारों तरफ व्याप्त है। इस भाषा में और इस तरह की बातचीत में अच्छे अनुभव भी नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस देश के कई हिस्सों में जाकर ऐसे लोगों से मिलने को मुझे मिला है जिन्होंने विलक्षण काम किए हैं, जिन्होंने बहुत खराब परिस्थिति में, बहुत खराब परिवेश में अपने पुरुषार्थ, अपनी लगन से अपना पर्यावरण साफ किया है, अपने जल स्रोत साफ किए हैं, अपने कुएं निखारे हैं, अपने तालाब पुनर्जीवित किए हैं। ऐसे कई लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं पाता हूं कि ऐसे लोग उस बातचीत में घुस भी नहीं पाते, क्योंकि उस बातचीत में सही में ये जानने की इच्छा नहीं है कि चीजों को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो एक बातचीत है जिसको आगे चलाने के लिए और बातचीत चाहिए होती है, तो उसमें नीति निर्धारण किस्म के शब्द आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि नीति बनाना अंग्रेजी में सिल्वर बुलेट कहा जाता है। नीति बनाना एक तरह का सामाजिक बातचीत में भी शॉर्टकट मान लिया गया। मुझे आप लोगों से बातचीत करना कठिन लगता है, आपसे बातचीत करूंगा तो आपको जानना पड़ेगा, आपके परिवेश को जानना पड़ेगा, आपकी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, नहीं करना हो तो क्या करूं, नीति बदलनी चाहिए। उसमें मैं आप लोगों को भीड़ बना सकता हूं, मुझे आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी स्थिति क्या है, आपके दुख दर्द क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, ये सब जानने से मैं बच जाता हूं, क्योंकि मैं मेज पे जोर से अपना मुक्का मार के कह सकता हूं, नो टेल अस व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ डू वी थिंक पॉजिटिव। एक अमेरिका के गायक हैं जिनका इस पर एक गाना है, द पावर ऑफ पॉजिटिव ड्रिंकिंग। तो ये बातचीत एक अजब किस्म के नशे में होती है, उसमें इतनी पावर ड्रिंकिंग है, इतनी सत्ता इतने लोग पी गए हैं कि उसमें सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन सच्चाई की गुंजाइश है इस बातचीत से बाहर है। मुझे एक विलक्षण सरकारी अधिकारी से मिलने का मौका मिला, नाम है ध्रुवज्योति घोष। घोष साहब थोड़े अड़ियल किस्म के अधिकारी थे, तो ऐसे लोगों को आप लोग जानते ही हैं, सरकार में कुछ ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां वो किसी और को तंग ना करें, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत अजीब अजीब से सवाल करने लग जाते हैं। तो घोष साहब को योजना पश्चिम बंगाल के योजना बोर्ड में 1980 में भेज दिया गया, और उनके माथे एक ऐसा काम पड़ा गया जो सरकार में उस समय बिल्कुल ही अरुचि का माना जाता था। तो उस समय केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे अधिनियम जारी किए थे जिनके अंतर्गत मैले पानी के सदुपयोग के तरीके ढूंढने थे, तो उन्हें यह निर्देश दिया गया कि आप जाइए देश भर में घूम के मैले पानी के सदुपयोग के तरीके ढूंढ के लाइए। तो उनका टिकट टिकट बन के आ गया, लेकिन घोष बाबू थोड़े खुददार आदमी हैं, तो घोष बाबू ने कहा कि अब मैं चला जाऊंगा, मैं उन लोगों से 50 तरह के सवाल करूंगा, अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे शहर में क्या होता है तो क्या जवाब दूंगा। तो घोष बाबू ने यहाँ वहां देखना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया कि हमारे यहाँ मैले पानी का क्या होता है, किसी को नहीं पता, राज्य के योजना बोर्ड में किसी को पता ही नहीं था कि कोलकाता शहर के मैले पानी का क्या होता। तो उन्होंने उसके बाहर जाके राज्य सरकार में मालूम किया, वहां भी किसी को नहीं पता। सब खोजबीन के बाद उनको पता लगा कि किसी अधिकारी को नहीं पता कि कलकत्ता के मैले पानी का क्या होता। तो घोष बाबू तेरा खुददार खुदा आदमी है, तो वो नाली के किनारे किनारे पैदल चलने लगे।
हेलो,
पैदल चलते 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 उन्हें एक अद्भुत व्यवस्था के दर्शन हुए, जिसमें कलकत्ता का मैला पानी, वहाँ के साधारण मछुआरे तालाबों में खड़ा करके उसमें काई उगाते हैं, उस काई से मछली पैदा करते हैं, उसमें फिर भी जो मैला बच जाता है उससे धान उगाते हैं, कोलकाता के कचरे से सब्जी उगाई जाती है। ये सब उन्होंने देखा तो घोष बाबू को जब सरकार में सताया जा रहा था तो उस समय उन्होंने पीएचडी कर दी थी, तो उन्होंने अपने पीएचडी के सुपरवाइजर को चिट्ठी लिख के कहा कि मुझे ये देखने में मिला है। तो सुपरवाइजर साहब ने कहा कि अगर तुम वहाँ 5 साल लगा दोगे तो इतिहास रच दोगे। तो घोष बाबू ने जवाब दिया कि 5 साल या मैं 10 साल लगा दूंगा। ये घटना 35 साल पुरानी है, घोष बाबू आज भी वही कर रहे हैं। और अगर घोष बाबू उन तालाबों को पाट कर नए भवन बन गए होते, घोष बाबू ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि पर्यावरण दिवस पर उनको अपने स्टेटस अपडेट में लिखना था कि आई हैव सेव्ड द वेटलैंड्स ऑफ ईस्ट कोलकाता। घोष बाबू का वहां के मछुआरों से एक संबंध बना जो धीरे धीरे उन्होंने सरकार के भीतर भी डाल दिया, जिससे पता लगता है कि अगर अधिकारी अच्छे हों तो सरकार और समाज में उतनी बड़ी खाई जरूरी नहीं है जितनी हमें आमतौर पर दिखाई देती है। हमारे देश में पर्यावरण की चेतना चिपको आंदोलन से आई थी। चिपको आंदोलन में कहीं पर्यावरण नाम का शब्द ही नहीं था। साधारण अनपढ़ गांव वालों ने सरकार के ठेकेदारों को जंगल काटने से मना किया था, कोई उसमें धरती बचाना, वसुंधरा बचाना, ग्रीन अर्थ, सेव द अर्थ, सेव द वेल, कुछ भी नहीं था उसमें। अपना परिवेश और ये समझ कि हमारा जीवन हमारे पर्यावरण से सीधा जुड़ा हुआ, तो क्या ये बातें पुराने लोग ही करते हैं, अनपढ़ लोग ही करते हैं? क्या पढ़ा लिखा होना इस तरह की दुनिया में अभिशाप है? ऐसा जरूरी नहीं है। घोष बाबू पढ़े लिखे आदमी हैं, पीएचडी किए हुए। मेरे ऐसे ही एक और मित्र हैं, उनका नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ पूरे देश में घूम घूम के लोगों को कई तरह से अपने कुएं अच्छे करने की प्रेरणा देते हैं, सुचारू शौचालय बनाने के तरीके बताते हैं, ऐसे शौचालय जिनसे नदियां प्रदूषित नहीं होती, जिनसे मिट्टी के उर्वरक घूम के वापस मिट्टी में जाते हैं। और अगर आप विश्वनाथ के घर पे चले जाएं, बेंगलुरु में रहते हैं, तो उनके घर की छत अपने आप में एक छोटा सा वन है, उनकी सारी सब्जियां वहीं से आती हैं, उनकी जरूरत की कई चीजें उन्हीं के घर के ऊपर एक पाखाना बना हुआ है जिसमें पेशाब और मल अलग हो जाता है, उसको उठा के वहीं के वहीं वो अपने छोटे से खेत में डाल देते हैं। और वो खेत भी नहीं है तो वो बिल्कुल जंगल बन गया है, और उनको कुछ भी जरूरत हो वो ऊपर जाते हैं, 2 टमाटर निकाल के ले आते हैं। पढ़े लिखे लोग भी ये कर सकते हैं। और अगर आप विश्वनाथ से बात करेंगे तो विश्वनाथ आपको अपने टमाटरों की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बता देंगे। आप लोगों ने ये तो पक्का है कि आपने खबरों में, अखबारों में, टीवी में बेंगलुरु के तालाबों से होता हुआ झाग देखा होगा। विश्वनाथ ने बेंगलुरु के 2-4 तालाब इतने साफ कर लिए लोगों के साथ मिलकर कि वहां भरी गर्मी में घूमना एकदम अरण्य आभास देता है। इनमें भी वही मैला पानी आता है जो दूसरे तालाबों में जाता है, लेकिन विश्वनाथ ने इन तालाबों के आसपास रहने वाले लोगों को वापस इन जल स्रोतों से जोड़ा है।
पर्यावरण का सत्य बहुत जटिल सत्य है। ये ग्लानी में या आदर्शवाद में अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट, इस तरह की भाषा में की हुई बातचीत से ये सत्य कभी भी उजागर नहीं हो सकता। जहां जटिलता ज्यादा हो वहां दिखाई के एक गजब के कारीगर ने मुझे ये बताया था कि अंग्रेजी में कहा था कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी यू नीड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सिंप्लिसिटी। मैं पाता हूं कि चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पीएचडी किए हुए हो, कैसे भी लोग जो अच्छा काम पर्यावरण का करते हैं उनमें बहुत सारी जटिलता को बहुत सरलता से साधने की इच्छा होती है। वो सरलता व्यवहार से आती है, वो सरलता साधना से आती है, वो सरलता सत्य से आती है। आज से 15 साल पहले मुझे कुछ वैसी झलक अपने बुद्ध साहब से हुई मेरी एकमात्र भेंट में मिली थी। उन्होंने मैं उनके पास बहुत उलझे हुए और कठिन सवाल लेकर गया था। घंटे भर के भीतर उन्होंने मुझे बहुत सरल अपना काम करने का एक तरीका बता दिया था। आज यहाँ हम ये बातें बुद्ध साहब के कंधे पे खड़े होकर करते हैं। जिन लोगों में अपने अच्छे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं हो वो कुछ आगे भी अच्छा नहीं कर सकते। आप लोग आज भी उत्साह की यात्रा की याद में ऐसा कार्यक्रम करते हैं, ऐसे पर्व बनाते हैं, ये इसका सूचक है कि हम सही में अपने अच्छे पुरखों के प्रति कृतज्ञ पूरी तरह से तो नहीं हुए। आज भी जब पर्यावरण में बहुत ही पराये पर की बात चल रही हो तब हमें कुछ अपनापन साधने की गुंजाइश कहीं ना कहीं बची है। आप अपने देश को, अपने पर्यावरण को, अपने समाज को अपने पन की इन्हीं आंखों से साधेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं धीरज से आप सबके धीरज का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात यही समेटता हूँ। नमस्कार।
धन्यवाद सलमान। मैं भाषण से पहले प्रभाष जी का जिक्र करने से बचता रहा। मैं सोपान को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखना चाहता था, मगर एक ख़ास बात जो मुझे देखने को मिली वो भाषा की सहजता, सरलता और तरलता, वो सब कुछ प्रभाष जी से मिलता जुलता नज़र आया। प्रभाष जी जब जनसत्ता का संपादन करने के लिए चले थे इस बात का ख्याल रखा था उन्होंने कि ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म का बोझ ढोती है हिंदी उससे बचे और सीधी सीधी बात करें। करीब करीब वही सब कुछ सोपान की वक्तव्य में दिखाई दिया। मैं रश्मि सारस्वत को सोपान तथा यहाँ आए हुए सभी मेहमानों के प्रति आभार व्यक्त करने का निवेदन करता हूँ।